ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की आज होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी और दोपहर तक परिणाम आने की संभावना है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने सुचारू मतगणना के व्यापक प्रबंध किए हैं। आयोग ने रुझानों और परिणामों को बताने के लिए अपनी वेबसाइट www.eci.gov.in पर समुचित व्यवस्था की है। मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर में 873 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। समूचे केंद्र शासित प्रदेश में 28 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों के लिए 18 और 25 सितंबर तथा 1 अक्टूबर को 3 चरणों में मतदान कराया गया था। हरियाणा के 22 जिलों में आज होने वाली मतगणना के लिए 90 केंद्र बनाए गए हैं। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था। मतगणना से 1031 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर शनिवार को हुए मतदान में 67.9% मतदान हुआ, जो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में दर्ज मतदान प्रतिशत से 3% अधिक है। चुनाव आयोग ने कहा कि इस बार का मतदान प्रतिशत 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज आंकड़े के काफी करीब था, तब 68.3% मतदान हुआ था। भारत ने मालदीव को 40 करोड़ डॉलर की सहायता और 3000 करोड़ रुपए की द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय की सुविधा प्रदान की है। ये सहायता मालदीव को वर्तमान वित्तीय चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। ये निर्णय नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मोइजू के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान लिया गया। दोनों देशों ने भ्रष्टाचार को रोकने और उससे निपटने के लिए द्विपक्षीय सहयोग सहित 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मालदीव के न्यायिक अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तथा खेल और युवा मामलों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच 2 समझौतों का नवीनीकरण भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सहयोग को रणनीतिक दिशा देने के लिए व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी का दृष्टिकोण अपनाया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वामपंथी नक्सलवाद से प्रभावित सभी राज्य कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से उन्मूलन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री शाह ने कहा कि नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए एक बार सभी का पूरी ताकत से जुटना आवश्यक है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में वामपंथी नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल मुंबई के कांदिवली में कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र भारतीय उद्योग परिसंघ, ग्रेटर मुंबई नगर निगम और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के बीच सहयोग के माध्यम से स्थापित किया गया है। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि आने वाले वर्ष में इस केंद्र द्वारा 1,00,000 से अधिक उम्मीदवारों के लिए नौकरी के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि ये केंद्र उद्योगपतियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देकर शिक्षा और रोजगार के बीच के अंतर को कम करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में वर्ष 2022 के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऋषभ शेट्टी को कन्नड़ फिल्म कंतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। नित्या मेनन को तमिल फिल्म तिरुचित्रावलम के लिए और मानसी पारेख को गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कल स्वास्थ्य कार्यबल, शिक्षा क्षमता, आपूर्ति और मांग का आकलन करने में अफ्रीका की सहायता के लिए स्वास्थ्य श्रम बाजार विश्लेषण उपकरण को लॉन्च किया है। ये उपकरण श्रम बाजार विश्लेषण में स्वास्थ्य कार्यबल योजना के एकीकरण की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। कीनिया में WHO के प्रतिनिधि अब्दुल रहमान डायलो ने कहा कि यह उपकरण पूरे महाद्वीप में स्वास्थ्य कर्मियों के रोजगार के लिए निवेश आवश्यकताओं की पहचान करने में मदद करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।